सभी राष्ट्रों के लिए परमेश्वर का संदेश, यीशु मसीह का जीवन, जगत के जीवित उद्धारकर्ता। भारतवर्ष के हमारे प्रिय नागरिकों, भाइयों और बहनों को, जिनकी ऋषि मुनियों से लेकर युगों युगों तक की अभिलाषाओं ने जगत के जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य जीवन में परिपूर्णता को प्राप्त किया है, उसके प्रेम के आलिंगन से कोई भी अछूता नहीं है। प्राक्कथन, जहां तक हम जानते हैं कि चारों सुसमाचारों के तथ्यों को एक प्रचलित इतिहास कथा का रूप देने हेतु सबसे पहले सुव्यवस्थित करने का श्रेय असीरिया के एक मसीही को जाता है, जिनका नाम टेशियन था, जिन्होंने इस कार्य को लगभग 170 ईस्वी में पूरा किया। उनका यह कार्य, जो यूनानी भाषा में डियाटेसरॉन तथा सीरियक भाषा में द कंबाइंड गॉस्पल कहलाता है, विशेष रूप से सीरियाई मसीहों के मध्य 250 वर्षों तक बहुत अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली था। संभवतः भारत में सीरियाई मिशनरियों द्वारा सुसमाचार को इसी रूप में लाया गया था। इसके बाद एक भारतीय बाइबल विद्वान श्री पी आई जेकब ने टेशियन के सिद्धांतों के अनुसार अंग्रेजी में द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रकाशित किया। इस प्रकार के कार्य की प्रस्तुति कोई आसान बात नहीं है। इस कार्य में चारों सुसमाचारों का बड़ी सावधानी पूर्वक तुलनात्मक अध्ययन और समानांतर अभिलेख तथा कालानुक्रम के महत्वपूर्ण विषयों पर पुनरावृत्ति निर्णय शामिल होते हैं। संकलनकर्ता को बार बार अपने मनो को इस बात के लिए तैयार करना पड़ता है कि क्या दो समरूप दृष्टांत या घटनाएं मूल रूप से अलग अलग थी, या इन्हें एक ही मूल घटना के अलग अलग विवरणों के रूप में समझना चाहिए। समस्याएं विशेष रूप से तब विकट होती हैं जब सहदर्शी विवरण का तालमेल यूहन्ना रचित सुसमाचार के विवरण के साथ बिठाना पड़ता है। जब भी इस प्रकार की समस्याएं इस पुस्तक को तैयार करने में खड़ी हुई, श्रीमान जेकब ने इन पर सावधानी पूर्वक ध्यान दिया है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जिस कौशल का उपयोग किया गया, उसके लिए श्रीमान जेकब बधाई के पात्र हैं। प्रशंसा और सराहना के इन शब्दों को लिखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, तथा श्रीमान जेकब के साथ मेरी भी आशा और प्रार्थना है कि बहुत से पाठगण यीशु मसीह का जीवन चरित्र के इस संस्करण के द्वारा आकर्षित होंगे तथा वे मसीह के व्यक्तिगत पहचान तक पहुंचेंगे। संशोधित संस्करण की भूमिका। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण एवं पुनरुत्थान के तुरंत बाद प्रेरितों द्वारा यरूशलेम में प्रचार किया गया उसका सुसमाचार उस समय के संपूर्ण ज्ञात तथा आवश्यक संसार में जंगल की आग की तरह फैल गया। उसके तुरंत बाद यह भारत के समुद्री तटों में भी पहुंच गया। भारत में प्रभु यीशु के सुसमाचार का आरंभिक प्रभाव इतिहास में बहुत ही अच्छी तरह से अभी प्रमाणित किया गया है। परंपरा बताती है कि संत थोमा भारत आए थे तथा उन्होंने मलाबार क्षेत्र में कलिसियाएं स्थापित की, जो अब केरल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि चेन्नई के निकट अपनी शहादत से पहले संत थोमा ने अपने अरामिक भाषा में मती के सुसमाचार के प्रति अपने विश्वसनीय चेले मिलियेकल के थोमा को दक्षिण भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित निरानम में दी। तीसरी सदी के चर्च फादर और रोमन इतिहासकार इसुबियस यूनान के एक दार्शनिक तथा अध्यात्मज्ञानी पेटेंट्स के विषय में बताते हैं कि उन्होंने 190 ईस्वी के कुछ समय पूर्व भारतीय कलिसियाओं का निरीक्षण किया था। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मती के सुसमाचार के एक प्रति मिलिकियल के थोमा के पास है, और वे सुसमाचार की उस प्रति को सिकंद्रिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय में अपने साथ लेकर गए। इसके अतिरिक्त जिन बिशपगणों ने 325 ईस्वी में नाइसियन स्वीकृत मत अर्थात नीसियन क्रीड पर हस्ताक्षर किए, उनमें भारत से बिशप जॉन भी सम्मिलित थे, जिन्होंने उस महासभा में महाभारत अर्थात ग्रेट इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो भारत में मसीहत को आरंभिक मौजूदगी तथा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रभाव को प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र तथा उनके सेवा कार्य अर्थात सुसमाचार के मुख्य वृत्तांत सुसमाचार के मूलभूत संदेश की रचना करते हैं। इस प्रकार से इसके लिखित अभिलेख सुसमाचार के फैलाव के लिए आवश्यक बन गए। नया नियम के प्रेरित गण या उनके सहकर्मियों ने उस आवश्यकता की पूर्ति की जो हमारे पास नए नियम के चार सुसमाचारों के रूप में उपलब्ध है, मती, मरकुस, लूका तथा यूहन्ना रचित सुसमाचार। हर किसी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानने की इच्छुक हैं, ये चारों सुसमाचार प्रमुख स्रोत या संसाधन हैं। प्रभु यीशु के जीवन चरित्र की विषयक प्रस्तुति में ये चारों सुसमाचार एक भिन्न कलानुक्रमिक रीति व्यवस्था का अनुसरण करते हैं तथा उनके विषयों की चयन भी भिन्न है। प्रभु यीशु के जीवन चरित्र और कथनों का एक संपूर्ण चित्र तैयार करने के लिए चारों सुसमाचारों के एक संयुक्त कलानुक्रमिक विवरण की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र नामक यह पुस्तक इसी तरह की एक रचना है। चारों सुसमाचारों में घटनाओं का कलानुक्रम के संबंध में बाइबल विद्वानों के मध्य भिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। यद्यपि हमारे पास कुछ घटनाओं के क्रम के स्पष्ट प्रमाण हैं, पर ऐसी भी कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर निश्चयात्मक रूप से घटनाओं के क्रम का निर्णय लेना कठिन है, परंतु हमारे पास उपलब्ध जानकारी की सहायता से अच्छे मूल्यांकन और विवेक के साथ घटनाओं के क्रम की सही निर्णय लेने में विशेष ध्यान रखा गया है तथा सुसमाचार लेखकों के कथनों के मूल अर्थ को बनाए रखने में कोई भी कसर छोड़ी नहीं गई है। साथ ही साथ लेखकों के कथनों में बिना किसी व्यक्तिगत पसंद या पूर्वाग्रह के प्रतिलिपि तैयार की गई है। इस पुस्तक में वृत्तांतों के लिए नेशले के यूनानी मूल ग्रंथ और मुख्य स्रोत आधार के रूप में लिया गया है। इसके अलावा अनुवाद की विश्वसनीय, सुस्पष्ट और रोचक बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है। मूल ग्रंथ को किसी भी तरह की संक्षिप्त व्याख्या या विस्तारण से बचाने का यथासंभव प्रयास किया गया है। दोहराव से बचने के सिवा मूल ग्रंथ से कोई भी पद छोड़ा नहीं गया है। मूल ग्रंथ की जीवंतता को उठाए रखने के लिए इस पुस्तक का प्रारूप की रूपरेखा तैयार की गई है। अध्यायों और अनुच्छेदों के शीर्षक पाठक को इस पुस्तक की विषय सूची के विवरण में प्रसंग और पारगमन की पहचान करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। यद्यपि लेखक के मूल कार्य के विषय को वैसा ही रखा गया है, फिर भी अध्यायों को विषय वस्तु की दृष्टि से बांटा गया है तथा अध्यायों की संख्या कम की गई है। प्रस्तावना के खंड में प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र का एक पूर्वालोकन दिया गया है। इस पुस्तक को 7 खंडों में सुव्यवस्थित किया गया है तथा इसका आरंभ प्रभु यीशु के जन्म से होता है, तत्पश्चात नासरत में उसका बाल्यकाल, पूरे पैलेस्टाइन में उसकी सेवकाई, यरूशलेम में उसका क्रूसीकरण तथा उनके पुनरुत्थान का विवरण देते हुए इसका विकास होता है। इसका समापन प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण तथा दोबारा वापस आने की प्रतिज्ञा के साथ होता है। अपसंहार एक आकर्षक जीवनी प्रत्येक निष्पक्ष पाठक को प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए पर्याप्त कारणों को उपलब्ध कराता है। पवित्र बाइबल में सुसमाचार के प्रत्येक विवरण की तुलना तथा अध्ययन हेतु पाठकगण की सहायता के लिए सुसमाचार की घटनाओं के साथ संबंधित बाइबल स्थल भी दिए गए हैं। हमारे विचार से कोई भी स्पष्टीकरण जो पाठकगण के लिए लाभकारी हो सकता है, अध्यायों और टिप्पणियों खंड में सम्मिलित किया गया है। पुस्तक के पाठकों में पंक्तियों के ऊपर की ओर लिखे गए नंबर इन टिप्पणियों को चिन्हित करते हैं। शब्दावली खंड में सुसमाचार के विशेष शब्दों के अर्थ चित्रित किए गए हैं। परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वे अपनी महिमा के लिए इस पुस्तक प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र के स्वामी बने त तथा उसे आशीषित करें। और जो पाठकगण इस पुस्तक के पन्नों को पढ़ते हैं उनके लिए वे स्वयं को और भी अधिक यथार्थ बनाएं। प्रस्तावना, प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र, एक झलक। प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र अपनी संपूर्ण महिमा एवं प्रताप में सभी लोगों से गहन चिंतन की मांग करता है। अनंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मानव इतिहास में प्रवेश एक अनोखी घटना है। उनके जीवन की सही समझ तथा उसके प्रति एक सही प्रतिक्रिया हमारे जीवनों को रूपांतरित कर सकती है तथा इस जीवन के बाद के जीवन के लिए आशा प्रदान कर सकती है। और इसलिए इस पवित्र जीवन पर एक और जीवनी लिखी गई है, जिन्होंने 2 सहस्त्राब्दियों पूर्व अपना जीवन जिया। अनेक लोगों द्वारा इस जीवन का विवरण दिया गया, जिसमें उसके चेले तथा अन्य लोग भी समान रूप से सम्मिलित हैं। यहाँ पर उन सच्चाइयों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जिन पर निश्चयतापूर्वक विश्वास किया गया है। इस अभिप्राय को सशक्त करने के लिए अभिलेख पवित्र आत्मा के प्रेरणा प्राप्त लेखकों मती, मरकुस, लुका और योहन्ना से लिए गए हैं। यह एक एकीकृत अखंड रिकॉर्ड है जिसमें कोई भी बाह्य सामग्री जोड़ी नहीं गई है। प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा। 52 से 54 ईस्वी में जन्मे रोमी इतिहासकार टेसियस ने कहा, लोगों को प्राचीन भविष्यद्वाणियों में यकीन दिलाया गया था कि पूर्व को प्रचलित होना था तथा यहूदिया से जगत के स्वामी और शासक को आना अवश्य था। इसी तरह से चीन के लोगों को भी प्रतीक्षा थी, जो यह विश्वास करते थे कि पश्चिम में एक ज्ञानी महामानव पैदा होगा। एस्क्यूलस नामक एक प्राचीन यूनानी नाट्यकार में लिखा था कि परमेश्वर लोगों के पापों के दर्द को अपने सिर पर वहन करने के लिए प्रकट होंगे। प्लूटो, सुक्रात, कन्फ्यूसियस तथा अन्य दार्शनिकों ने भी उस महापुरुष के आगमन की प्रतीक्षा के बारे में लिखा था। प्रभु यीशु को जो बात अन्य सभी लोगों से अलग करती है वह यह है कि उसका आगमन पूर्वा अनुमानित या प्रत्याशित था। पवित्र ग्रंथों में भविष्यद्वाणी हुई थी। प्रभु यीशु के आगमन के लिए परमेश्वर ने जगत को तैयार किया तथा इन बातों को अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रकट की। बाइबल की सबसे पहली पुस्तक में ही प्रभु यीशु के आगमन की उद्घोषणा हो चुकी थी, जो हम पाते हैं उत्पत्ति का 3:15 में। इसके बाद से प्रभु यीशु के जन्म से संबंधित सारे विस्तृत विवरण और अधिक स्पष्ट तथा कोलाहलपूर्ण हो गए। प्रभु यीशु के जन्म से सदियों पूर्व कुंवारी कन्या से उसका उत्पन्न होना, दाऊद राजा के नगर बैतलहम में उसकी पैदाइश, उसके जन्म से संबंधित वंशावली तथा उसके जन्म और मृत्यु से संबंधित अनेक सच्चाइयां पहले से भविष्यद्वाणियों के द्वारा बता दी गई थी। क्या इस बात पर ध्यान देना आश्चर्यजनक नहीं होगा कि प्रभु यीशु के जीवन में घटित होने वाली सभी बातें परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पहले से प्रकट कर दी थी। महान प्रेरित पौलुस ने कहा, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार 3rd day जी भी उठा। यह हम पाते हैं 1 कुरिन्थी की पुस्तिका उसका 15:3-4 में। सारी बातें जो प्रभु यीशु के साथ घटित हुई वे पवित्र शास्त्र के अनुसार घटित हुई। प्रभु यीशु के व्यक्तित्व की अद्वितीयता। यीशु मसीह अनंत परमेश्वर है। वह मानव जाति को पाप से बचाने के लिए मनुष्य बना। पाप को छोड़कर उसमें मनुष्य का पूरा स्वभाव था। वह पवित्र था। यह बात उसके मित्रों तथा बैरियों के द्वारा बारंबार अनुप्रमाणित की गई। वह ईश्वरीय प्रेम का देहधारण था। बच्चे और बुजुर्ग, अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित, समाज के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति चाहे वह बहिष्कृत भी क्यों ना रहा हो, उसके सानिध्य में स्वीकार योग्य था। जो भी उसके पास आया उसने जीवन के उद्देश्य को पाया। उसकी जीवनी हमें पर्याप्त मात्रा में मिसाल प्रदान करती है। अपने वचनों एवं कार्यों में सिद्ध, उसने स्वयं के विषय में जो दावे प्रस्तुत किए उन पर जरा ध्यान दे। जगत की ज्योति मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिसने मुझे देखा है उसने पिता परमेश्वर को देखा है। ये उसके द्वारा स्वयं के विषय में कहे गए चौंका देने वाले प्रकाशनों में से कुछ ही हैं। यदि ये दावे सच नहीं हैं तो कोई भी समझदार व्यक्ति अपने विषय में इस प्रकार के दावे नहीं करेगा। उसके वचन दयाशील तथा उसके कार्य सुहावने थे। जिन्होंने उसके वचनों को सुना वे उसके वचनों की सामर्थ्य से शिथिल हो गए। एक बार कुछ सैनिक उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजे गए। उन्होंने वापस आकर अपने भेजने वालों को रिपोर्ट दी कि किसी ने भी उसके समान आज तक बातें नहीं की है। उसने आत्मिक प्राणियों अर्थात दुष्टात्माओं और प्रकृति अर्थात आंधी और पानी इत्यादि को आज्ञा दी और उन्होंने उसकी आज्ञा मानी। उसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और इस तरह के अनेक आश्चर्य के कार्य किए। उसका जीवन औरों से अलग था। मनुष्य जब तक जीवित रह सकता है वह तब तक जीवित रहना चाहता है। चिकित्सा और तकनीक के क्षेत्रों में निरंतर प्रगति जीवन की सीमा अवधि को बढ़ाने के लिए मददगार होते हैं, परंतु मृत्यु तो अटल और निश्चित है। दूसरों के विपरीत प्रभु यीशु इस जगत में अपना प्राण देने और मानव जाति को उनके पापों से उद्धार देने के लिए आया। किसी भी जीवनी में किसी मनुष्य की मृत्यु को अधिक स्थान नहीं दिया जाता, परंतु सुसमाचारों का एक बहुत बड़ा भाग इस धरती पर प्रभु यीशु के जीवन के अंतिम 7 दिनों के बारे में अंकित किया गया है। प्रभु यीशु के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना था। पाप और पाप के भयंकर दुष्परिणामों से छुटकारा पाना ही उद्धार है। क्रूस पर अपना प्राण देते समय प्रभु यीशु लोगों के पापों के दंड को स्वयं पर वहन और सहन कर रहा था। वह वही काम कर रहा था जिसे मनुष्य खुद अपने लिए नहीं कर सकता, और वह फिर से जी उठा। वह उन सभी का उद्धार करता है जो अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं। मानव इतिहास पर उसका गहरा प्रभाव। प्रभु यीशु ने कभी भी कोई किताब नहीं लिखी। उसने फलिस्तीन के बाहर कभी भी यात्रा नहीं की। उसके पास सिर धरने के लिए भी जगह नहीं थी। उसने कभी भी कोई भजन नहीं लिखा, परंतु यदि उसके सभी कामों के बारे में पुस्तकें लिखी जाती तो वे जगत में भी नहीं समा सकती। उसके बारे में संदेश सभी उपलब्ध चैनलों पर पृथ्वी के सभी किनारों में पैठ जाते हैं। उसके बारे में लिखे गए भजन और स्तुति के गीत अगिनत हैं। प्रभु यीशु के समान किसी और ने इतिहास में इतना गहरा प्रभाव नहीं डाला है। पिछली सदी का एक उद्धरण उपयुक्त हो सकता है। 19 सदियों आई और चली गई और आज भी वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और उत्थान के स्तंभ का अधिनायक है। मैं सीमा के अंदर रहते हुए यह बात कहता हूँ कि सारी थल सेनाओं ने जितना मार्च किया है, सारी जल सेनाएं जितनी जल यात्राएं की हैं, सारी संसदों की जितनी बैठकें हुई है, सारे राजाओं ने जितना राज किया है, यदि इन सभी बातों को एक साथ रखा जाए तो ये सभी बातें एक साथ मिलकर भी इस धरती पर मनुष्य के जीवन को इतना प्रभावित नहीं की है जितना कि यह एकमात्र एकांत जीवन। प्रजातंत्र, राजनीति, कानून, कला अर्थात आर्ट, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यताएं, कोई भी क्षेत्र उस धन्य जीवन से अछूता नहीं रह गया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर के जीवन का अध्ययन करते हैं तो हम उस आदर्श पुरुष के जीवन पर ध्यान करते हैं जो मानव रूप में देहधारी परमेश्वर है। जब हम प्रभु यीशु के जीवन को गौर से देखते हैं तो हमारा साक्षात्र ईश मानव के अद्वितीय जीवन के साथ होता है, एक ऐसा साक्षात्कार जो हमें रूपांतरित कर सकता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मैं एक यहूदी हूँ परंतु मैं यीशु नासरी की स्वच्छ छवि अर्थात व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हूँ। प्रभु यीशु की वास्तविक उपस्थिति का अनुभव किए बिना कोई भी व्यक्ति उसके विषय में लिखे गए सुसमाचारों को पढ़ नहीं सकता। उसका व्यक्तित्व प्रत्येक शब्द में कंपायमान होता है। कोई भी कहानी इस प्रकार के जीवन से भरी हुई नहीं है। कोई भी गंभीर पाठक बिना किसी पूर्वाग्रह के यदि प्रार्थना पूर्वक प्रभु यीशु की जीवनी को पढ़ता है तो वह भी ऐसा ही अनुभव प्राप्त करेगा, अर्थात उसकी वास्तविक उपस्थिति और उसके साथ हमराही बनने का अनुभव। विषय प्रवेश। इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले से ही इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठाक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तू ना शिक्षा पाई है कैसी अटल है। संत लूका।